वो बीमार हो जाता है तो चार डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए। तो पहले दो डॉक्टर को दिखाता है, उनसे दवाई लेता है, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाता है, उनको दो की दवाइयाँ दिखाता है कि ये दो दवाइयाँ दी हैं तो कौन सी वाली बढ़िया है। हाँ, फिर चौथे से दोबारा कंसल्ट करता है और फिर दवाई खाता है वो। हाँ, तो ये जो सोच है कि दवाई बढ़िया से बढ़िया खाई जाए, इसके पीछे जो रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है कि व्यक्ति मरना नहीं चाहता है ना, वो चाहता है हमेशा जिंदा रहूं, है ना। पीछे एक लड़की की न्यूज़ दिखा रहे थे कि उसको कोई बीमारी हो गई थी तो उसका मरना निश्चित था, उसका कोई 15-20 साल की लड़की थी वो, तो उसने कोर्ट में एक याचिका डाली कि मेरी जो बॉडी है उसको सुखा के प्रिजर्व किया जाए। पढ़ा आपने किसी ने? आपने, अच्छा आपने पढ़ा है ना, आपने भी पढ़ा है। हाँ, टीवी में देखा था। सो तो उसका जो प्रोसेस होता है कि उसको जब वो मर जाएगी या उसको मार देंगे इंजेक्शन वगैरह दे के, तो उसके शरीर से पाइप लगा के सारा खून बाहर खींच लेंगे और उसकी जगह उसमें केमिकल्स डाल देंगे नसों के अंदर और पूरी बॉडी को सुखा देंगे एकदम से, और फिर उसको -200 या पता नहीं कितने डिग्री पे उसको फ्रीज कर देंगे उसको। हाँ, तो उससे क्या है कि कल को कभी ऐसी कोई तकनीक आई जिससे कि मृतक व्यक्ति को जीवित किया जा सके या उस बीमारी का इलाज मिल जाए, तो वो वापस केमिकल निकालेंगे, खून डाल देंगे और वो दवाई से इलाज करके लंबे समय तक जी पाएंगे वो। तो ये जो अमरत्व की जो खोज है, जो इच्छा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी नई डेवलप हुई है, ये सदियों से अमरत्व के पीछे लोग भाग रहे हैं, है ना। आप सबने समुद्र मंथन की कथा पढ़ी है ना, कितने लोगों को समुद्र मंथन के बारे में पता है? हाँ, सो बहुत ही अद्भुत कथा है और बहुत ही पुरातन कथा है वो, है ना। इंडोनेशिया में एक मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है, उसमें पूरा समुद्र मंथन का पूरा जो रेखांकित किया गया उसको वहाँ पर। सो उसमें असुर और सुर, देवता और असुर दोनों इकट्ठे हुए और मंदर पर्वत को उन्होंने मधानी की तरह यूज़ किया, वासुकी नाग को रस्सी की तरह यूज़ किया उन्होंने, है ना। तो पहले जो देवता थे वो वासुकी नाग के मुख की तरफ थे और जब रस्सी से उसको, जब वासुकी नाग को खींच रहे थे तो गर्मी उसके शरीर में आ रही थी घर्षण से, तो उसके वासुकी नाग के मुख से बहुत जहरीली हवाएं निकल रही थी, तो देवता आधे वैसे ही मर गए थे कि उसके जहर के प्रभाव से। तो उन्होंने भगवान को बोला कि ये अमृत मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। तो भगवान ने बोला भी असुर क्यों आएंगे वासुकी नाग के मुख के सामने, जब तुम लोग मर रहे हो तो असुर क्यों सामने आएंगे। तो भगवान ने असुरों को बोला कि तुम पूंछ ही पकड़ के खींचते रहो, है ना, कमजोर आदमी के लिए यही ठीक है। तो असुरों ने बोला कौन है कमजोर, हम तो मुंह खींचेंगे। तो असुर मुख की तरफ आ गए और जो देवता है वो पूंछ पकड़ के खींचना शुरू किया। सो अब लेकिन वो मंदर पर्वत हिल रहा था, तो उसको स्थिर रखने के लिए भगवान ने कच्छप का जो अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया भगवान ने। तो ये ऐसी लीला है कि इसमें भगवान कछुए के रूप में आए, मोहिनी के रूप में आए, है ना। सो भगवान ने अनेक रूपों में आकर देवताओं की सहायता की। तो कछुए के रूप में भगवान आए तो मंदर पर्वत को वो कछुए की पीठ पर, भगवान की पीठ पर स्थापित कर दिया। सो लेकिन भगवान जो है, भगवान आनंद लेना चाहते हैं, है ना। कोई भी स्थिति हो, भगवान को आनंद चाहिए, है ना। ऐसी भगवान कोई भी स्थिति में नहीं जाते जहाँ पर आनंद नहीं मिले भगवान को। तो भी प्रश्न उठता है कि वो कछुए के जो रूप में भगवान आए, मंदर पर्वत, भारी भरकम पर्वत भगवान के शरीर पे, पीठ पे रख दिया, तो उसमें क्या आनंद आ रहा था भगवान को, नहीं। सो भगवान ने ऐसी लीला की कि भगवान की पीठ पर खुजली हो गई। हाँ, तो अब वो खुजली मिटाने के लिए जब सब देवता और असुर मंदर पर्वत को हिला रहे थे, हाँ, तो उससे भगवान की खुजली जो है वो हट रही थी। हाँ, तो भगवान को अच्छा लग रहा था, है ना। सो भगवान हर स्थिति में, हाँ, आप मतलब आपने कभी पीठ पे खारिश करते हो, नहीं करते हो? अच्छा लगता है ना। हाँ, सो भगवान ने भी ऐसी अद्भुत लीला की कि वो समुद्र मंथन की लीला में इतना भारी पहाड़ पर्वत उनके पीठ पे रखा हुआ है, फिर भी उनको अच्छा लग रहा था भगवान को। सो अमरत्व की जो तलाश है वो तो बहुत पुरानी है ही। बच्चों को पीछे ले जाओ चाहे तो। हाँ हाँ, जो बच्चे माता के साथ में पीछे जाके बैठ जाओ बच्चे। सो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। सो वेल, सो एक बार मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है आप में से किसी ने? हाँ, कौन है मार्कंडेय ऋषि? हाँ, ज्यादा पता नहीं है। दुर्गा सप्त सती। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ लिया? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा करो, दुर्गा सप्त सती कहाँ पे पहुंच गए? पहले के समय में पढ़ा आपने। सो मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम था मरकंडू। आप बोलोगे ये क्या परिचय हुआ, मार्कंडेय तो चलो नाम सुना था, लेकिन मरकंडू नाम तो किसी ने भी नहीं सुना होगा। लेकिन उनके दादा का नाम था भृगु। सो भृगु के पोते थे मार्कंडेय ऋषि। सो भृगु के संतान थी मरकंडू, और जो भृगु है उनकी पत्नी का नाम था ख्याति, और मरकंडू की वाइफ का नाम था सावित्री। सो उनसे तो मरकंडू ऋषि के घर में मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 12 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाएगा, है ना। सो जब वो उनका जन्म हुआ तो उन्होंने पूरा संस्कार वगैरह किए, फिर पढ़ने के लिए लिखने के लिए भेज दिया। तो 10 वर्ष की आयु में वापस आए और आके अपने माता पिता को बताया कि मैं वेदों में पूरी तरह से पारंगत हो गया हूँ। तो माता पिता को खुशी नहीं हुई। सो क्योंकि उनको पता था कि थोड़ा सा समय रह गया अभी, है ना। सो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ये मतलब मैंने वेदों में पूरा प्रवीण हो गया, मैं दक्ष हो गया, लोग खुश होते हैं कि चलो पढ़ाई पूरी हो गई, आप लोग खुश क्यों नहीं हो रहे। तो उसकी माता ने उसको बता दिया कि देखो आपकी 12 वर्ष की तक आपकी आयु है, उसके बाद आपका देहांत हो जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला आप चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। तो मृत्यु से बचने के लिए, जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो अपने दादा के पास गए, और सो उनके दादा ने बोला, उनको बोला कि तुम्हारी तो 12 वर्ष तक की आयु है, ज़्यादा आयु नहीं रह गई, तो उन्होंने बोला मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे मृत्यु का इलाज बताइए, है ना, आप मुझे बताइए कि क्या इलाज करूं कि मेरी मृत्यु नहीं हो। हाँ, सो भृगु ऋषि ने उनको बोला कि देखो आप, कोई बात नहीं, चलो दो बच्चों को चुप कराने के पीछे 10 बंदे और शुरू हो जाएंगे। सो भृगु ऋषि ने बोला कि आप नारायण का, कृष्ण का नाम लो आप, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो नाम है वो सारी विपदाओं से बचाने वाला है, है ना। सो उन्होंने उन्हें मंत्र दिया भगवान कृष्ण का नाम जपने के लिए, और उन्हें बोला कि आप इस मंत्र का जाप करो और आपको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो गए और उन्होंने जो है भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब आयु पूरी हुई उनकी तो यमदूत आ गए लेने के लिए, लेकिन जैसे ही यमदूत उनको लेने आए तो वहाँ पर विष्णु दूत भी आ गए, और विष्णु दूतों ने उनको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, आप इनको नहीं लेके जा सकते। तो बड़ा बुरा लगा यमदूतों को, है ना, तो वापस गए और साक्षात मृत्यु को उठा के ले आए अपने साथ कि चलो हम तो विफल हो गए लेकिन तुम तो साक्षात मृत्यु हो, तुम ही ले चलना इसको। तो मृत्यु ने उसको बोला मार्कंडेय ऋषि को कि चलो हमारे साथ, हाँ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा भी नहीं उसकी और भगवान के नाम का जप करते रहे। तो जो मृत्यु है वो मार्कंडेय ऋषि के पास नहीं पहुंच पाई, छू नहीं पाई उनको, क्योंकि वहां पर विष्णु दूत खड़े थे। विष्णु दूतों ने बोला कि अगर आपको जान पे आ रही है तो भाग जाओ यहां से। तो जब यमदूत और मृत्यु मिलकर यमराज जी के पास गए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो यमराज जी ने बोला कि देखो मेरा जो आधिपत्य है, जो मेरी ताकत है, जो मेरा प्रभाव है पूरे ब्रह्मांड पर चलता है, लेकिन जो वैष्णव है, जो विष्णु भक्त है, जो भगवान के दिव्य नामों का जप करने में लगा हुआ है, उस पर मेरा प्रभाव नहीं चलता। तो उन्होंने कहा तुम पहली बार थोड़ा ना विफल हुए हो, वो अजामिल भी तो था, उसको भी लेने गए थे, मैंने तुम्हें मना किया था कि उसी समय मैंने कहा था कि अगर किसी ने गले में कंठी माला डाली है, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है तो भैया उसको हाथ मत लगाना, उसको आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, उसको मत छेड़ना, बाकी और किसी को मर्जी है लेके आओ, कुछ टेंशन नहीं है। ये जो बात है ये इतनी सुनने में सरल है, लेकिन सुन के भी लोग कर नहीं रहे हैं इसको, है ना। लोगों को वो पतंजलि योग पर ज़्यादा विश्वास है, हाँ कि लाखों लोग आज पतंजलि का वो रामदेव बाबा के पीछे भाग रहे हैं। बुरा नहीं है, वो ठीक है, शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें भक्ति करने में मदद करे। जो दवाइयां हैं, ये पतंजलि योग है, सैर है, कुछ भी है, ये सब साधन है, लक्ष्य नहीं है। ये हमारा लक्ष्य जो अपने जीवन को बहुत लंबा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है इस शरीर की उतनी देखभाल करना जिससे कि शरीर स्वस्थ बना रहे और हमें मदद मिले भगवान का भजन करने में। अगर हम पूरा टाइम ही इस शरीर के बारे में सोचने में लगा देंगे तो चाहे ये शरीर स्वस्थ भी बना रहेगा तो भी फायदा नहीं है। मान लिया बहुत हमने सावधानी बरती, बहुत हमने व्यायाम किया, सैर सपाटा किया, बहुत हमने दवाइयाँ खाई, विटामिन्स खाए, तो चलो 100 साल की जगह 150 साल जी लोगे, बस बात खत्म। कभी ना कभी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति हमें लेके आनी चाहिए कि एक ही बार मरे अभी, है ना, बार बार नहीं मरे। कोई बोले कि क्या भक्त मरता है, तो हाँ भक्त की मृत्यु होती है, लेकिन फर्क यह है कि जो अभक्त है उसकी बार बार मृत्यु होगी, लेकिन जो भक्त है उसकी एक ही बार मृत्यु होगी, है ना। वो एक बार मरेगा, उसके बाद सीधा भगवत धाम जाएगा। वो उसको बीच में दोबारा से फिर माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वापस उसको त्रिताप नहीं सहने पड़ेंगे, वापस उसको अपने प्रिय लोगों का, संबंधियों का जो है बिछोह नहीं सहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं आता, है ना, वहीं पर शाश्वत रूप से बना रहता है। हाँ, तो वहाँ पर भगवान के धाम में जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हमारे बनेंगे, वो पहले भी थे मित्र, ऐसा नहीं है कि हम जाके कुछ नया संबंध बनाने वाले हैं। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान से हमें कोई नया संबंध स्थापित नहीं करना, संबंध है। तो जिस प्रकार भगवान से हमारा एक संबंध है जो हमें अभी नहीं पता, उसी तरह से वैकुंठ वासियों के साथ भी हमारा एक संबंध है ऑलरेडी। अभी हमें विस्मृति हो गई है, विस्मृति का मतलब ये नहीं है कि संबंध नहीं है, संबंध है, लेकिन अभी हमें याद नहीं है उस संबंध के बारे में। जब हम भगवान का भजन करेंगे तो उस भजन के माध्यम से हमें भगवान का संग प्राप्त होगा, है ना। रूपा गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सामे सिंधु में बता रहे हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है तो स्वयं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जीवा पर नृत्य करते हैं। क्यों नृत्य करते हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन अगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि वो नृत्य करते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि नृत्य कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भगवान और उनके नाम में कुछ भी भेद नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान में और उनके नाम में कुछ भी भेद नहीं है। अगर हम, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम पानी 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 बोलेंगे तो बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी वस्तु और पानी नाम में फर्क है, भेद है। अगर हम किसी दवाई का नाम लेते रहेंगे, कोई अगर सुपोत तबीयत खराब हो गई, कोई हम दवाई का नाम लेते रहे, है ना, तो वो दवाई का नाम लेने से ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उस दवाई में और दवाई के नाम में फर्क है। लेकिन क्योंकि भगवान चिन्मय वस्तु हैं, भगवान चित वस्तु हैं, भगवान जो है इस भौतिक जगत के नियमों से बंधे हुए नहीं है। ये भौतिक जगत भगवान के अधीन है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, जो भौतिक जगत भगवान के अधीन है, भगवान भौतिक जगत के नियमों के अधीन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान जब आते हैं पृथ्वी पर, जब भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान भौतिक नियमों के अधीन हो जाते होंगे। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो आत्म माया, अपनी माया शक्ति से आते हैं, कुछ भी किसी फोर्स हो के, कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने उनको मजबूर किया हो आने के लिए। मजबूर भी करते हैं, भक्त भगवान को मजबूर करते हैं आने के लिए, लेकिन जो प्रकृति के नियम है वो भगवान को मजबूर नहीं कर सकते कि चलो आप जाओ और ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य करो, है ना। भगवान किसी के भी अधीन नहीं है, भगवान स्वच्छंद है, भगवान स्वेच्छा से कार्य करते हैं, है ना। तो क्योंकि भगवान इस भौतिक प्रकृति के नियमों से बंधे हुए नहीं है, और भगवान चिद वस्तु हैं, इसीलिए भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी भेद नहीं है। तो अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं मतलब हम भगवान का साक्षात संग कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे, है ना। अभी हमारी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि वो भौतिक जो इच्छाओं से बंधी हुई हैं, हाँ, भौतिक जो हमारी त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, हमारे अनुभव करने की शक्ति को खत्म कर रही हैं, कम कर रही हैं, इसीलिए हम भगवान का संग पाकर भी हम उसका उतना अनुभव नहीं कर पाते। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पीलिया का मरीज है उसको मीठी गोली खिलाओ तो भी उसको कड़वी लगेगी, क्योंकि जो जबान का जो टेस्ट है खराब हो जाता है, नहीं तो। लेकिन पीलिया का इलाज क्या है कि मीठी चीज खिलाते रहो, उसको मीठा चूसता रहेगा तो धीरे धीरे पीलिया रोग दूर हो जाएगा। और जैसे ही पीलिया रोग दूर होगा वैसे ही वो जो कड़वी लग रही थी, जो वस्तु, जो जो टॉफी, जो कैंडी कड़वी लग रही थी, वही जो टॉफी है वो मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। वो टॉफी पहले भी मीठी थी लेकिन हमें कड़वी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा रोग दूर होगा वैसे वैसे जो वो कड़वाहट है वो जाती रहेगी। इसी प्रकार से अगर हम नियमित रूप से अगर हम भगवान के नामों का जप करते रहेंगे, भगवान की सेवा में अगर हम संलग्न रहेंगे, तो जो हमारी इंद्रियों की अपूर्णता है, जो कमी है, वो धीरे धीरे जाती रहेगी। जो आज अनुभव करने की ताकत हमारे में नहीं है, हम चाहकर भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो जो शक्ति जो अभी कुंद हो गई है, अभी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, कम हो गई है, भौतिक इंद्र तृप्ति में लगातार रत रहने से, वो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे, तो भगवान के संसर्ग से, भगवान के साथ में मिल के रहने से धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। शुद्ध होने का मतलब है हमारी इंद्रियां भौतिक से आध्यात्मिक बन जाएंगी। इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक्षज। सो अगर हम इस जैसे हमारी भौतिक इंद्रियां शुद्ध होंगी, जैसे ही भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिकरण हो जाएगा हमारे इंद्रियों का, वैसे ही जो भगवान के जो गुण है सच्चित और आनंद, वो हम भी उसको अंगीकार कर लेंगे। और जब हम उसकी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे जिसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं, तो उस समय हम ये शरीर छोड़ के हमें दोबारा दूसरा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तक, क्योंकि स्वरूप सिद्धि हो गई है, हमारा जो आध्यात्मिक, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है वो हमें पता चल जाएगा। ये शरीर छोड़ के हम उस आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे जो कि सत्य है, मतलब हमेशा रहेगा, अमर रहेगा, कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, और ना ही उसमें कोई बढ़ोतरी होगी, ना ही कुछ घटाव होगा, है ना। जैसा आध्यात्मिक शरीर है वैसे ही हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, और उस समय हम ये जान पाएंगे कि भगवान के साथ हम किस रस में स्थित हैं, और हमारे सगे संबंधी मित्र बंधु बांधव कौन है, और उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहने वाला है। तो वो प्रक्रिया है अमरत्व प्राप्त करने की। अमरत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, ये नहीं है कि अपने शरीर को फ्रीज कर दो, जमा डालो उसको, कि कभी कुछ इलाज निकलेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इलाज है, लेकिन इतना सरल इलाज है कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते, है ना। इतना सरल इलाज है, लोग सोच रहे हैं कि यार इतना सरल है, लाख रुपए कोई खर्च के अगर कुछ सलाह देगा तो लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे, है ना। अगर कोई मुफ्त में अगर सलाह दे दे, कोई इलाज बता दे, तो लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते, है ना। सो ये जो ये इलाज जो है, ये जो अमृत्व की जो औषधि है, हाँ, ये सबसे टॉप मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे पूरे हृदय से। हमारे मन में ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से श्रद्धा आ गई है। हम अगर पूरी तरह से श्रद्धा आ गई है तो फिर हम जप करना छोड़ क्यों देते हैं? फिर तो हमें 24 घंटे जप करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा, अभी हम बहुत सारी चीजों में और भी उलझे हुए हैं। ये सुन भी लिया कि ये सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी इस पे विश्वास नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट है, राज विद्या है, लेकिन साथ ही राज गुह्यम भी है, है ना। भगवान कह रहे हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम परमम इदम अपवित्रम इदम उत्तमम, है ना, कि ये सर्वश्रेष्ठ है। ये जानकर भी हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं पूरी तरह से, डरते डरते धीरे धीरे हम इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि अभी हम काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, सामने दिख रहा है, लेकिन भगवान का नाम लिया तो क्या मिला? सामने से दिख नहीं रहा है ना, सामने से दिख नहीं रहा हमें कि हमने भगवान का नाम लिया और हमें कुछ प्राप्ति हो गई, है ना। इसीलिए श्रद्धा का बहुत महत्व है। जब तक हमें श्रद्धा नहीं आएगी, जब तक हम भगवान की वाणी पर और भक्तों की वाणी पे जब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि ये विधि का पालन करने से, भक्ति करने से अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, तब तक हम पूरी एफर्ट, पूरा प्रयास नहीं लगाएंगे इसके अंदर, है ना। कमी हमारे प्रयास में नहीं है, प्रयास में कमी तो लक्षण है, दिख रहा है, उसके पीछे जो कारण है हमारे प्रयास में कमी जो है, उसका कारण है कि हमें अभी पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा कि ये संभव है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है, है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यासदेव जी ने अनेक जो है पुराणों का, अनेक ग्रंथों में, अनेक उन्होंने जो सच्ची घटनाएं हैं उन्होंने लिखी हैं, और इन घटनाओं का, जैसे मार्कंडेय ऋषि है, उनकी इस कथा को बताने के पीछे, जो अजामिल की कथा है उसको बताने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम कभी हमारे मन में ये विश्वास जागृत हो जाए कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम जपने से अगर अजामिल को फायदा हुआ, अजामिल और मार्कंडेय ऋषि में फर्क क्या था? मार्कंडेय ऋषि दीर्घायु की कामना से भगवान का नाम ले रहे थे, सोच के भगवान का नाम ले रहे थे, हाँ, वो नारायण को नारायण समझकर उनका नाम ले रहे थे, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा मैं मरना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा वो तो हो चुका पहले से ही, वो तो बात खत्म हो चुकी, तुमने सोचा मेरा नाम लिया वो बात खत्म हो चुकी है, तुम्हें कोई भी अकारण अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी तुम्हें आकर मृत्यु कभी भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, वो बात खत्म हो चुकी, और बताओ क्या चाहिए, है ना। तो खैर मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहा हूं और मैं आपके दर्शन कर पाऊं दोबारा से। तो मार्कंडेय ऋषि ने तो सोचा था, अजामिल ने तो सोचा भी नहीं था, है ना, और ना ही वो नारायण को लक्ष्य करके नारायण नाम बोल रहा था, है ना। तो जो अजामिल पर भगवान ने बहुत ही मतलब ये दिखाने के लिए कि मेरे नाम की महिमा है क्या, हाँ, जो हम भगवान का अगर नाम ले रहे हैं, अगर हमने लक्ष्य करके भी नाम नहीं लिया भगवान का तो भी काम करेगा, और अगर लक्ष्य करके नाम ले लिया फिर तो कहना ही क्या है ना। तो अजामिल की कथा से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि लास्ट में देखेंगे है ना, अभी अभी मजे लो है ना। जैसे अजामिल ने पूरा जीवन पाप किए, लास्ट में नारायण हरि नाम ले लिया तो बात खत्म हो गई है ना। सो उसी प्रकार हम भी ऐसा कर लेंगे, हाँ, हम भी अभी जो है पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं, बाद में हम भगवान का नाम ले लेंगे है ना। जल्दी क्या है, हाँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों है ना। तो इतनी जल्दी क्या है, जल्दी इसलिए है क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं है कब मरने वाले हैं है ना। मार्कंडेय ऋषि को पता था कि मरने वाला हूं, 12 वर्ष पूरे होंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही एक और राजा थे, क्या नाम था, मुचकुंद, राजा थे मुचकुंद, हाँ, मुचकुंद नहीं थे, खटवांग, राजा खटवांग थे। हाँ, तो राजा खटवांग इतने पराक्रमी थे कि देवता उनकी हेल्प लेने के लिए आते थे। हाँ, मुचकुंद भी वैसे इतने पराक्रमी थे कि देवता उनकी हेल्प लेते थे, लेकिन मुचकुंद की बात अलग है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो खटवांग जो राजा है उनका प्रसंग ज्यादा उपयुक्त है। तो खटवांग जो राजा थे उन्होंने बहुत हेल्प की देवताओं की, तो देवताओं ने उनसे जब लड़ाई खत्म हो गई, जीत गए देवता खटवांग राजा की मदद से, तो उन्होंने बोला आप हमसे वरदान मांगो। तो खटवांग राजा ने बोला कि आप मुझे बताओ मेरी आयु कितनी है। तो सभी देवताओं ने बोला कुछ और मांग लो। तो उन्होंने बोला बस यही बता दो भैया मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला एक घड़ी की आयु है तुम्हारी। तो तुरंत जो राजा खटवांग थे उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और अमरत्व को प्राप्त किया। लेकिन चलो खटवांग को पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ, हाँ, और परीक्षित महाराज को पता था मैं मरने वाला हूँ, जो मार्कंडेय ऋषि को पता था मैं मरने वाला हूँ, तो उन्होंने चलो किसी ने एक हफ्ते की प्लानिंग की। एक हफ्ते की प्लानिंग किसने की थी, परीक्षित महाराज ने। किसी ने एक साल की प्लानिंग की, मार्कंडेय ऋषि ने। किसी ने एक घड़ी की प्लानिंग की, हाँ, जो खटवांग राजा ने। लेकिन हम किस श्रेणी में आ रहे हैं, हम इनमें से किसी श्रेणी में नहीं आ रहे। कभी पता नहीं है कभी मृत्यु सामने आकर उपस्थित हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु के समय बहुत स्वस्थ होंगे, आराम से भगवान का नाम ले लेंगे, माला अपने पास रख लेते हैं, चलो। मृत्यु के समय हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, पूरे शरीर जो है इतने हजारों बिच्छू के काटने का दर्द होगा, असहनीय। उस समय हम एकदम से अपनी चेतना को नहीं पलट पाएंगे कि पूरा जीवन जो किया, आप खुद ही सोच लो, आप पूरा दिन जो काम करते हो, रात को सोते समय क्या सोचते हो, सोना जो है वो भी मृत्यु का ही समान है, कुछ सुध-बुध रहती है, हाँ? रात को सोते समय क्या विचार आते हैं, रात को सोते समय वही विचार आते हैं जो पूरा दिन किया, किसी से झगड़ा हो गया, रात को सोते समय क्या विचार आएगा, उसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे ना, हाँ? या तो नई प्लानिंग बनाएंगे उससे झगड़ा करने की, जो उस समय नहीं बोल पाए थे वो अगले दिन सुबह जाके बोलेंगे उसको, है ना, वो तो याद ही नहीं थी यार ये बात भी बोल सकते थे, नहीं, कई बार होता नहीं होता ऐसे। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि हरेक भक्त को सोने से पहले कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ के सोएंगे तो रात को आप कृष्णा के बारे में सोच पाओगे, है ना। अगर हम कृष्णा बुक नहीं पढ़ के हम कुछ और करते हुए सोएंगे तो पूरी रात हमें उसी का ध्यान आएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आपने अमर होना है तो रात को कृष्णा बुक पढ़ के सो। अगर हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो रात को हमें बुरे सपने नहीं आएंगे। हाँ, वो बुरे सपने को भगाने वाला एक व्यक्ति आएगा और उसका नाम है कृष्णा, है ना। सो अगर हम रात को सोते समय भी हम पूरे दिन की घटनाओं को याद कर रहे हैं तो जो हमने पूरा जीवन किया, मृत्यु के समय कोई और चैनल नहीं लगने वाला, मृत्यु के समय वही चैनल लगेगा जो हमने पूरा जीवन किया है, है ना। इसीलिए ये जो भगवान के नाम का जप है, भगवान के नाम का जो जप है वो भगवान को याद करने का एक तरीका है। अभ्यास कर रहे हैं हम निरंतर भगवान को याद करने के लिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो 16 माला जप किया, माला को खूंटी पर टांग दिया, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने दो बातें बोली हैं। पहली बात, प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं बोला कि 16 माला जप करो। प्रभुपाद ने क्या बोला? कम से कम 16 माला का जप करो, है ना। लोग बोलते हैं कि 16 माला का जप, 16 माला का जप बिल्कुल गलत है। प्रभुपाद कभी भी बोल नहीं रहे कि 16 माला का जप करो। प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम 16 माला का जप करो। और दूसरी बात प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आप 16 माला का जप माला पे करो और हजारों जो माला है आप अपने मन में जप करते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो भगवान का नाम याद करते रहो, है ना। क्यों करते रहो? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। अगर अमर बनना है तो ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जो अमर है। अगर धनवान बनना है तो ऐसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जो धनवान है, नहीं। अगर आपने योग सीखनी है तो रामदेव बाबा का संग करना पड़ेगा क्योंकि वो योग सिखा रहे हैं, नहीं। तो जिसके पास जो वस्तु है, अगर आपको वो वस्तु चाहिए तो उसका संग करना पड़ेगा। तो अगर आप अमरत्व चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का संग करो जो अमर है। और अमर व्यक्ति कौन है? अमर दो ही चीजें हैं, एक कृष्णा और दूसरे कृष्ण भक्त। राम और कृष्ण में तो कुछ भेद नहीं है ना प्रभु, है ना। नाम, नाम, हाँ, ओके ओके, फाइन, हाँ फाइन, नाम। सो कृष्ण और कृष्ण भक्तों का अगर हम संग करेंगे तो हम अमरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। दवाइयां खाने से, व्यायाम करने से जो है अमरत्व की प्राप्ति ना कभी किसी को हुई है आज तक और ना ही आगे कभी होने वाली है। क्योंकि भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जो भौतिक जगत है इसमें चार दोष हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये चार जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चार समस्याएं हैं, इसका कोई भी भौतिक इलाज नहीं है। कोई भी बूढ़ा होने से नहीं बच सकता, कोई भी बीमार होने से नहीं बच सकता। अब हम पीछे जो नांगलोई की रथ यात्रा हुई थी वहां पर महाभारत का भीम आया था, है ना। तो मैंने देखा वो स्टैंड लेके चल रहा था, तो सारा बल उसका खत्म हो गया। मैं एक व्यक्ति, मेरा जानकार था, करोलबाग में रहता था, क्रिश्चियन था वो। तो वो मुझे एक बार बता रहा था, बूढ़ा हो गया था, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे कहता था कि मेरे जो पिता है वो मुझे कहते हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लियो, किसी को मुक्का मत मारियो। कह रहा मेरे मुक्के में इतनी ताकत है कि जिसको मार दिया वो उठ नहीं पाता बंदा दोबारा। तो कह रहा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं भाई कुछ भी करियो, किसी को मुक्का मत मारियो। अब वो उसकी उम्र हो गई, जब मैं उससे मिला तो उसकी उम्र हो गई थी करीब 55-60 साल की थी उम्र उसकी। आंखों से दिखना बंद हो गया था, ऐसे ऐसे करके चलता था। तो मैंने कहा भैया वो मुक्के की ताकत कहाँ गई? कह रहा यार खत्म हो गई। अब नहीं हुई। कह रहा अब तो डर लगता है कोई मुझे आके थप्पड़ मार जाए तो मुझे पता भी नहीं चलेगा किसने मारा, दिखाई नहीं देता। कह रहा सामने की चीज दिखाई नहीं देती, बिल्कुल अंधे की तरह हो गया था। उसका हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता था उसको, है ना। तो कितनी भी ताकत होगी सब खत्म हो जाएगी। जो भी ताकत है अगर आप में कुछ भी अच्छाई है तो वो भगवान कृष्ण की मौजूदगी के कारण है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं अपने बारे में। ये समझ लो भैया इस संसार में जितने भी विभूतियां हैं वो सब मेरा एक अंश है ना। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, है ना, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है, जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो भगवान ने अर्जुन को संदेश भेजा था कि जब मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा तो तुम जो है द्वारका आना और मेरे सारे रानियां और सारा सामान वगैरह लेके मथुरा चले जाना, है ना, उनको अपनी सुरक्षा में लेके जाना। तो अर्जुन उनको लेके गया, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया उनको, सारी स्त्रियां उठा के ले गए, सारा धन लूट के ले गए। तो अर्जुन के पास गांडीव था उस समय भी, तो उसने गांडीव से उसके अपने जो तरकश था उसमें से बाण निकाल के उसने चलाए, खरोंच लग गई, जो डाकू थे ऐसे झाड़ा, काम खत्म हो गया। तो उसने फिर तरकश में देखा, 5-7-10 तीर चलाए तरकश में, देखा तरकश खाली हो गया, अक्षुण था वो तरकश, लेकिन 10-12 चलाए खाली हो गया वो। अभी क्या करूं? तो गांडीव से ही मारना शुरू कर दिया डाकुओं को, डाकुओं ने एक धक्का मारा उसको, दूर जाके गिरा वो, सारा सामान उठा के लेके चले गए वो। तो अर्जुन ने कहा समझ में आ गया मुझे, मेरी ताकत नहीं थी, समझ में आ गया मेरे को जो भी हो रहा था, भीष्म को हरा दिया, कर्ण को मार दिया, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये कृष्ण की ताकत थी। कृष्ण ने वापस ले ली और मुझे बता दिया कि भैया देखो तुम निमित्त मात्र ही थे, तुम्हारा कुछ भी योगदान नहीं था, योगदान तुम्हारा यही था कि मेरे कहने से तुम सामने आके खड़े हो गए, है ना, बस इतना ही योगदान था तुम्हारा, इससे ज्यादा कुछ बात नहीं थी, है ना। सो जो भी हम में कुछ कार्य करने की शक्ति है, कुछ क्षमता है हमारे अंदर, कुछ अच्छी बात है, तो ये समझ लेना कि वो भगवान कृष्ण की कृपा के कारण है। अगर वो भगवान कृष्ण की कृपा और मौजूदगी के कारण है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में मत लगाओ। भगवान कृष्ण की वस्तु है, उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दो। अगर हम भगवान कृष्ण की वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हमें अमर बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नहीं तो हम कितना ही प्रयास कर लें, लास्ट में ये ऐसा मकान है जिसमें आग लगनी ही है, है ना, इसमें आग लग ही रहेगी, है ना। और आप ऐसा मत सोचो कि चलो मर जाएंगे फिर दोबारा से जन्म ले लेंगे। अगर दोबारा से मनुष्य जीवन मिल भी गया तो आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। आप एक पीढ़ी पीछे के लोगों से पूछ लो और इस पीढ़ी के लोगों से पूछ लो, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले लोग कम काम करते थे, ज़्यादा सुखी थे, आज धन कमाने के लिए ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है, नहीं दौड़ना पड़ रहा है, नहीं दौड़ना पड़ रहा। तो अगर आप दोबारा जन्म लोगे और गलती से पुरुष का शरीर मिल गया स्त्री तो बोलेगी पुरुष को, भैया पैसे लेके आओ, नहीं? अगर पुरुष का शरीर मिल गया तो बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, है ना। सो ऐसा मत सोचो कि स्त्री का शरीर लेके सुख मिल जाएगा या पुरुष का शरीर मिलके सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे आने वाला समय और भी खराब होने वाला है। सो अगले जन्म की प्रतीक्षा मत करो, इसी को आखिरी जन्म मारो, भगवान का नाम लो और वापिस भगवत धाम जाके अमरता क्या होती है उसका आस्वादन करो। हरे कृष्णा। सो किसी का प्रश्न है तो